मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 13 नवंबर 2015 के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज मैं ऐसे 3 स्टूडेंट्स का स्वागत करने में बहुत बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं जितेंद्र, जो गया बिहार से हैं, देवेंद्र सिंह रघुवंशी, आप विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, और गिरीश शर्मा, आप ग्वालियर से हैं। तो जितेंद्र, देवेंद्र और गिरीश, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक ऐसे समय में जब मैं 3 साथियों का स्वागत कर रहा हूं, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे पहले आप कह लीजिए कि 23 तारीख से लेकर के और परसों तक जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं वेलकम करूंगा अपने मंडे के डेली ऑडियो गाइडेंस में। तो मित्रों, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि हालांकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो पहले कराया है, लेकिन उनका वेलकम इसके बाद में होगा। और सच पूछे तो इस बीच में हालांकि 2 ऑडियो गाइडेंस आए हैं, लेकिन जानबूझकर मैं उन स्टूडेंट्स के नाम नहीं ले रहा था। खासकर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो जो स्टूडेंट्स हैं दिवाली के लिए अपने घरों को जा रहे होंगे, अब दिवाली के बाद वो अपने घरों से फिर लौट रहे होंगे, तो हो सकता है कि इस बीच वे डेली ऑडियो न सुन पाए। वैसे भी आंकड़े ये बताते हैं कि ऐसे समय पर जो विजिटर्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे क्षमा मांगते हुए मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि मंडे को मैं उन सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करूंगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, जो इस डेली ऑडियो का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। और खासकर इस बार जब क्लासेस चल रही थी तो मैंने देखा, मैं सच पूछे तो अभिभूत हो गया, काफी कुछ आश्चर्य भी मुझे हुआ कि ये जो लाइफ मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, स्टूडेंट्स इसको लेकर के कितने उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहां तक कि उनके परिवार के सदस्य भी इस लाइफ मैनेजमेंट को सुनते हैं। बहुत लोगों के जीवन में इसके कारण बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स को तो इस बारे में भी मदद मिली है कि वे अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकें कि उन्हें क्लासेस अटेंड करनी है। दोस्तों, सच पूछे तो कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये जो लाइफ मैनेजमेंट वाले पोर्शन को क्या ड्रॉप कर देना चाहिए और इस वक्त का इस्तेमाल हम लोग कुछ और बातों की चर्चा करने में करें। मैंने बीच में कई बार अपने प्रिय श्रोताओं से इसके बारे में राय भी मांगी, लेकिन मैंने देखा कि सभी ने लगभग लगभग एक मत से, एक स्वर से मेरी इस इच्छा को, इच्छा नहीं कहिए, मतलब कह लीजिए कि मेरे इस ओपिनियन को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और सभी की मांग थी कि ये लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को रखा जाए। और अभी भी जब क्लास में मैंने स्टूडेंट से ये पूछा तो शायद ही कोई मुझे स्वर सुनाई दिया हो कि सर इसे हाँ खत्म किया जाना चाहिए। हाँ, कभी कभार मेरे पास मेल जरूर आ जाते हैं कि सर इसको बंद कर दिया जाए, ये बेकार है। हो सकता है कि उनके लिए बेकार हो, मतलब वो अपनी जगह पर गलत नहीं है, लेकिन मुझे बट नेचुरल है कि जो बड़ा ग्रुप है उनकी भावनाओं का, उनकी इच्छाओं का, उनकी मांग का सम्मान करना होता है। इसलिए मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट वाला जो भाग है वो निश्चित रूप से रहेगा, और फिलहाल तब तक तो रहेगा ही जब तक कि ये मुझे न लगने लगे या आप लोग ये मुझे खबर न करने लगे कि सर ये बेकार हो गया है और इसे हटा दिया जाए। तो मित्रों, निश्चित रूप से सच पूछे तो मैं तो सिविल सर्विस को भी इसी का हिस्सा मान करके चलता हूं। सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए जो मानसिक मजबूती चाहिए, उसके लिए जो सोच का एक नया तरीका चाहिए, उसके लिए जो एक रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए, एनालिटिकल पावर चाहिए, जिस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, मुझे लगता है कि उन सब में भी इस लाइफ मैनेजमेंट वाले पोर्शन का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। और खासकर जो जनरल स्टडीज का 4th पेपर है और जो एसे का पेपर है, उसमें इसकी भूमिका को लेकर के तो मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। तो मित्रों, मैं अब लाइफ मैनेजमेंट में आज जिस बात पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं, उसके लिए मैंने लिया है गोवर्धन पूजा को जो कल थी 12 नवंबर को, आपको मालूम है कि गोवर्धन पूजा थी, और मथुरा में तो खासकर इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो हमारी जो कथा है वो मथुरा से ही जुड़ी हुई है, जो कृष्ण के समय की घटना है। मित्रों, होता यह है कि जो सच पूछे तो जो धर्म है वो बेसिकली किसी समय में, पुराने समय में, हमारे समाज, हमारे राज्य और हमारे अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन की एक तरह से संहिता हुआ करते थे। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज कानून होते हैं, उसी तरीके से धर्म उस समय कानून हुआ करता था। और बट नेचुरल है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी कानून हो, कोई भी परंपरा हो, आप देखते हैं कि उस समय तो वो बहुत सटीक होती, क्योंकि वो अपने समय की समस्याओं के निदान के लिए वो कानून बनाए जाते हैं, वो परंपराएं आती हैं, वो धार्मिक व्यवस्थाएं की जाती हैं कि अभी हमारी ये जरूरत है तो इसके लिए ये विधान बना दिया जाए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि समय तो लगातार गतिशील है, समय आगे बढ़ता रहता है, उसी के अनुकूल समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। तो होता यह है कि समाज तो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारी वो जो परंपराएं, कानून और जो धार्मिक जो व्यवस्थाएं थी वो वही रहती हैं, वो टिकी रहती हैं। एक दौर फिर ऐसा आता है कि जबकि समाज के साथ अब उन पुरानी व्यवस्थाओं का उतना तालमेल नहीं बैठ पाता, नतीजा यह होता है कि इस तरह के जो विधि विधान होते हैं और जो समाज होता है, या आज की भाषा में कह लीजिए राज्य होता है, उसके बीच में एक तनाव की स्थिति बन जाती है, टेंशन हो जाता है। अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर इस तनाव की स्थिति को समाप्त कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए जो ये तनाव होंगे, जो सामाजिक तनाव होंगे, इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा ही। और जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज या लोगों के जीवन के बारे में सोचते हैं, या जिन्हें समाज ने यह दायित्व तो सौंपा है कि वो समाज का नेतृत्व करें, चाहे फिर वो धार्मिक व्यक्ति हों, चाहे वो प्रशासनिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो समाज सुधारक हों, कोई भी व्यक्ति हों, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और वो इसको ऑटोमेटिकली महसूस भी करते हैं कि नहीं, इस तनाव को कम किया जाना चाहिए। फिर नतीजा ये होता है कि पुरानी व्यवस्थाओं को नए शेप दिए जाते हैं, उनमें से कुछ को खत्म कर दिया जाता है और फिर कुछ बिल्कुल नए विधान बनाए जाते हैं। मित्रों, इस संदर्भ में आप देखें कि कृष्ण ने जो घोषणा की अपने अवतार लेने की, जो गीता में जिसका उल्लेख भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो धर्म क्या था। वो कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है तो मैं धर्म के उत्थान के लिए इस पृथ्वी पर आता हूं। अब सोच करके देखिए, अगर हम महाभारत की कथा को लें, महाभारत की पूरी कहानी को लें, जिसमें कि कृष्ण एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, केंद्र में है, तो वो कौन सा धर्म था जिसकी ग्लानी हो रही थी, जो सड़ गल जा रही थी, जो एक तरह से अपने समय से बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी, जिसकी वजह से समाज में तनाव पैदा हो रही थी, समस्याएं आ रही थी, वो धर्म कौन सा था? अगर आप इसको नाम देना चाहेंगे कि ये पर्टिकुलर धर्म है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप सामाजिक व्यवस्था के आधार पर इसका विश्लेषण करना चाहेंगे तो आपको ढेर सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। पूरा का पूरा राजकीय व्यवस्था उस समय कितनी गड़बड़ हो चुकी थी, नैतिक मूल्यों का कितना ज्यादा पतन हो चुका था, धन के लिए किस तरीके से आपाधापी मची हुई थी, इस तरह से ढेर सारी बातें आपको दिखाई देंगी जिसे कृष्ण ने, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का नाम दिया, और फिर वो उसी को संवारने के लिए, सजाने के लिए, और यहां तक कि बहुत से मूल्यों को तो नष्ट करके और बिल्कुल नए मूल्यों को स्थापित करने के लिए आते हैं। और कृष्ण ने इसकी शुरुआत ऐसा नहीं है कि केवल महाभारत युद्ध के माध्यम से ही की थी, कि महाभारत युद्ध किया और पांडव विजयी हो गए और कौरव हार गए और नए मूल्य स्थापित हो गए। आप छोटे से देखिए, कृष्ण जब बचपन में होते हैं, लड़के हैं सामान्य से, तब से वो इस धर्म की पुनर्स्थापना की कोशिश कर रहे हैं, और सच पूछिए तो जो गोवर्धन पूजा है वो उसी का प्रतीक है। देखिए कृष्ण कितनी खूबसूरत बात कहते हैं और कितने अधिक यथार्थवादी हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। कथा कुल मिलाकर की ये है कि जो मथुरा के जो लोग थे उस समय, तो आपको मालूम है कि कृषि संस्कृति ही थी, कृषि हमारे जीवन का मूल आधार था, हमारा मूल व्यवसाय था कृषि और पशुपालन, ये दो चीजें महत्वपूर्ण थी। तो इंद्र की लोग पूजा करते थे, इंद्र की पूजा क्यों करते थे? बहुत ही स्वाभाविक है कि इंद्र से, इंद्र को हमने वर्षा का देवता माना है, रेन्स गॉड है, वो गॉड ऑफ रेन्स है, तो वर्षा से ही कृषि होती है, वर्षा से ही चारागाहों में आपके घास होता है जिससे कि पशु जिन्हें खा करके और दूध देते हैं, मतलब पूरा का पूरा हमारा जीवन वर्षा पर ही निर्भर है। वो उस समय भी उतना ही सच था जितना कि वो आज सच है। लोग इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन इंद्र एक तरफ से उस समय बहुत ही भोग विलासी शासक के रूप में भी था, एक ऐसा देव जो भोग विलास में जो मग्न है। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने एक यथार्थवादी चिंतन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी पूजा बंद करो और उसकी जगह पर इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। क्योंकि आपको मालूम है कि जब कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की बात कही मथुरा वालों से, तो इंद्र नाराज हो गए और फिर उन्होंने जबरदस्त बारिश करनी शुरू की। बिजलियां कड़क रही हैं और बारिश हो रही है और बाढ़ आ रही है, और इन सब से मथुरा वासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, छाते की तरह, जैसे अम्ब्रेला हो, और पूरे के पूरे मथुरावासी उसके नीचे आ गए और सुरक्षित रहे। आप देखेंगे कि मथुरावासियों ने भी फिर अपनी अपनी लकुटिया उस गोवर्धन पर्वत को थामने में लगाया, यानी कि सभी ने मिलकर के एक तरीके से इंद्र के इस प्रकोप का सामना किया। अब आप देखिए मित्रों कि कृष्ण ने कहा कि इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। क्यों? कितना रियलिस्टिक है कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, यहां हमारे पशु चरने आते हैं, उनको यहां से चारा मिलता है, तो ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। हमें उनकी पूजा करनी है जो हमारे जीवन को संवार रहे हैं, हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व बना हुआ है, न कि उन तत्वों की जिनके अस्तित्व पता नहीं है नहीं है, या जो हमारे अस्तित्व को अब कम से कम किसी समय में हो सकता है कि वो संवार रहे हों, आज संवार नहीं रहे हों, रहे हैं। तो इस तरीके से धर्म आगे बढ़ जाता है, जिसे कबीर दास ने अपने समय में कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भरी पीस खाए संसार। वो भी यही बात कह रहे हैं कि जिससे समाज का भला हो रहा है, जिससे व्यक्ति का भला हो रहा है, सही मायने में वही हमारे लिए ईश्वर है और हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। यानी कि इसे आप एक दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वो प्रकृति की पूजा की बात कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को ही देवता भगवान जो कुछ भी आप कह लीजिए मान रहे हैं जिनसे समाज का हित सधता है। यानी कि जिससे समाज का हित सधता है वही पूजा है, वही धर्म है, और जो समाज का हित साधता है वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, या आप उसे जो भी नाम दे दें। तो दोस्तों, जो कृष्ण के जो ये विचार हैं, जो बहुत ही जो रियलिस्टिक अप्रोच है, वो बहुत अद्भुत है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो गीता है, गीता को उपनिषद का अंश माना गया, उपनिषद के प्रकारों में शामिल है, वो एक तरह का उपनिषद ही है। उपनिषदों का मतलब ही है कि जो एक लॉजिकल थिंकिंग देते हैं, जो प्रकृति के बारे में बड़े तार्किक रूप से सोचते हैं, आमने सामने गुरु और शिष्य बैठ करके बातचीत करते हैं, और जहां गुरु और शिष्य आपस में बैठ कर बातचीत करेंगे, या दो लोग जब भी आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, अगर बहस करेंगे तो मान करके चलिए कि बहस तो तभी हो सकती है जब किसी न किसी एक के पास तो तर्क हो, तर्क के आधार पर ही बहस हो सकती है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी उपनिषद की जो परंपरा थी वो एक तार्किक परंपरा थी, और ये जो गोवर्धन पूजा है जिसको कल पूरे हिंदुस्तान के बहुत से हिस्सों ने सेलिब्रेट किया है, पूरे श्रद्धा भाव के साथ सेलिब्रेट किया है, वह एक तरीके से मुझे लगता है कि एक तर्क की ही आराधना है। और मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि तर्क का सहारा लेकर के हम भी कहीं ना कहीं गोवर्धन पर्वत की तरह अटल, मजबूत चट्टान की तरह कभी न हिलने वाले हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज के बारे में। कल के AIR न्यूज में फ्रेंड्स काफी दो तीन चीजें बहुत अच्छी हैं, और नो डाउट कि उसमें जो सबसे पहली खबर थी वो हमारे प्रधानमंत्री जी की ब्रिटेन की यात्रा को लेकर थी, और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन गए हुए हैं। दोस्तों, जहां तक ब्रिटेन का सवाल है, ब्रिटेन से भारत के कैसे संबंध रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, कम से कम टेंथ तक तो उन सब ने हिस्ट्री पढ़ी ही हुई होती है और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत पर जब ब्रिटेन का शासन था तो उस समय भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कैसे थे, किस तरीके से ब्रिटेन का प्रभाव भारतीय समाज पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर, इन सब चीजों पर पड़ा। और स्पेशली जो उस समय ब्रिटेन में जो हमारे यहां से लोग पढ़ने गए, खासकर बैरिस्टर बनने लोग जाते थे, जिनमें गांधी जी भी हैं, जिनमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर भी थे, अंबेडकर साहब भी जिसमें थे, जिन्ना साहब भी थे, ये सब उस समय फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी मदन, मेरे समझ से शायद मालवीय जी भी थे, नहीं आपके मौलाना आजाद साहब भी थे, तो ये जितने भी रिनाउंड लॉयर्स थे उस समय के, वकील जो थे, वो बैरिस्टर बनने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन जाते थे। और वहां जब, वहां के जब समाज को देखते थे, डेमोक्रेसी को देखते थे, इक्वलिटी की भावना को देखते थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ देखते थे, तो उनके मन में भी अपने देश के प्रति एक खदबदाहट पैदा होती थी कि हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए। और डेफिनेटली जब वो पढ़ करके वहां से हिंदुस्तान आते थे तो उनकी जो धारणाएं होती थी मस्तिष्क में, जो विचार होते थे, वो बड़े नए होते थे, जिसे आप वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और उन्होंने ही फिर हमारे देश में जो एक फ्रीडम मूवमेंट था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको लीड भी किया। और नो डाउट फ्रेंड्स कि जब पूरे के पूरे आंदोलन में आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी की जिन वैल्यूज को लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों संघर्ष किया है, वो सारे के सारे वैल्यूज, उसमें से ज्यादातर जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे, उन सभी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान मिला। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भी वहां भाषण दिया तो हम भारत और ब्रिटेन के जो इस तरह के ऐतिहासिक संबंध हैं उनकी उन्होंने चर्चा भी की। मित्रों, जो एक बात जो बार बार न्यूज में भी थी और अखबारों में भी काफी उभर कर आ रही है, और वो ये है कि जो ब्रिटेन है वो भारत में सबसे बड़ा यूरोपीय निवेशक है। यूरोप के जितने भी देश हैं उन्होंने भारत में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन का है, और ठीक वाइस वर्सा भारत भी, भारत ने यूरोपीय देशों में जितना निवेश किया उसमें ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। एक ये भी बात है कि हमारे यहां से जो स्टूडेंट जा रहे हैं, जो खासकर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसमें ब्रिटेन दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां दूसरा देश है जहां हमारे सबसे अधिक स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक रिश्ते तो भारत के साथ हैं ही। मित्रों, नो डाउट कि इस पृष्ठभूमि में अभी जबकि हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हैं, तीन चार कह लीजिए कि बहुत अच्छे समझौते हुए हैं जिनके बारे में थोड़ी सी हमें जान लेनी चाहिए। पहला तो समझौता ये था कि एक बहुत बड़ी बात है कि ब्रिटेन ने ये बात कही है, एक्सेप्ट किया है कि सुरक्षा परिषद में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें यदि भारत अपनी दावेदारी पेश करेगा तो ब्रिटेन उसका समर्थन करेगा। आपको मालूम है कि ब्रिटेन जो है वो जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, 5 देश परमानेंट मेंबर में आते हैं, और अगर इन 5 देशों में कोई भी एक, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देता है, जिसे वीटो पावर कहते हैं, वीटो कर देता है, तो वो प्रस्ताव टर्न डाउन हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये, मैं समझता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि है कि ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो खबर है दोस्तों, जिसको आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, कि दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत परमाणु का शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करता है, मेडिसिन हो या और दूसरे एनर्जी हो इनके लिए, और उसमें ब्रिटेन का सहयोग मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। तीसरी जो बात थी फ्रेंड्स, वो था कि लंदन में भारतीय रेलवे के लिए रेलवे रुपए बॉन्ड जारी करने के लिए का वायदा ब्रिटेन ने किया है, और उसने ये भी कहा है कि वो गंगा सफाई अभियान में भारत की मदद करेगा, और यहां तक कि कुछ स्मार्ट सिटी भी वो बनाने में भारत की मदद करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, नो डाउट कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो ब्रिटेन की यात्रा है वो काफी कुछ सीमा तक एक सफल यात्रा कही जा सकती है। लेकिन और क्या हो सकता था इनकी और जो गहरी एनालिसिस होगा, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। दोनों देश अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं, सच पूछे तो कोई दूसरे के हित के लिए काम नहीं करता, अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं। और इन हितों के टकराव के बीच में से रास्ता निकालना होता है कि कैसे समझौते किए जाएं, कौन कौन से किए जाएं, किस सीमा तक किया जाए, किन को टाल दिया जाए। ये बहुत ही एक डिप्लोमेटिक, बहुत ही गहरे डिप्लोमेटिक अप्रोच की जरूरत होती है फ्रेंड्स। और डेफिनेटली चूंकि ब्रिटेन की यात्रा है, तो इस यात्रा के समापन के बाद हमें बहुत से एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे इनकी पूरी की पूरी समीक्षा को लेकर के। उस समय हम इसके बारे में और बातें करेंगे। एक बात की चर्चा मैं और आपसे करना चाहूंगा कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में डेविड कैमरॉन, जो आपको मालूम है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक आर्टिकल छपा है, इंग्लिश में है। उसमें भारत और ब्रिटेन के बीच के तीन संबंधों की बात कही है कि हम आपस में इन तीन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहेंगे। पहला तो उन्होंने कहा है कि समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने जैसा कि अभी मैंने बताया कि ब्रिटेन भारत में सबसे बड़ा निवेशक है यूरोपीय देशों में, और भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। G20 कंट्री में ब्रिटेन फर्स्ट है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ब्रिटेन चाहेगा कि भारत और अमेरिका, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते और अधिक मजबूत हों, और भारत भी वाइस वर्सा चाहेगा कि दोनों के रिश्ते और मजबूत हों, ताकि दोनों देशों की समृद्धि बढ़ सके। और आपको मालूम है कि खासकर जो ब्रिटेन की समृद्धि औद्योगिक क्रांति के बाद, तो बहुत से हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उस समय के फ्रीडम मूवमेंट के समय में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जैसे लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, उन लोगों ने तो एक सिद्धांत स्थापित किया था कि ब्रिटेन की जो आज की समृद्धि है और सही मायने में वो भारत जैसे समृद्ध राष्ट्रों के शोषण पर आधारित है, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन पर आधारित है। वो हम इतिहास में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। इसके बाद जो दूसरा एरिया जो आइडेंटिफाई किया है फ्रेंड्स कैमरन साहब ने, वो है प्रगति का, प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस का मतलब है कि बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको मिलकर के हम सामना कर सकते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल ग्रोथ, एक धारणीय विकास जिसको कहते हैं, ऐसा विकास जो लंबे समय तक चल सके। ऐसा नहीं कि अभी 5-10 साल तो बहुत बड़ी ग्रोथ हुई और इसके बाद सारा कुछ ध्वस्त हो गया। डेफिनेटली इसमें प्राकृतिक संरक्षण सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसी तरीके से एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि दोनों देशों में की जो वृद्ध आबादी है वो काफी संख्या में बढ़ रही है, तो उसको हम कैसे, उसका सामना करें, उसको कैसे मैनेज करें। और फिर है जो हमारे दोनों देशों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए। और क्लाइमेट चेंज तो एक कंबाइंड चैलेंज है जो जलवायु परिवर्तन की जो बात है। इसीलिए उन्होंने इसमें कहा भी है कि हम दोनों मिलकर के एक ऐसी साझेदारी का साझे में काम करेंगे जिससे कि ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार हो सके और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आपस में मिलकर कुछ कर सके। थर्ड एरिया जो कैमरन साहब ने जो आइडेंटिफाई किया है वो है कि किस तरीके से एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बनाई जा सके, पूरी दुनिया में शांति हो और पूरी दुनिया में सुरक्षित हो। डेफिनेटली फ्रेंड्स इसका जो संबंध है वो खासकर विश्व आतंकवाद जो चल रहा है, विश्व आतंकवाद उसको लेकर के है। साइबर अटैक भी है इसमें, नो डाउट। इसमें परमाणु हथियारों में जो एक होड़ लगी हुई है वो भी है, और साथ में ये भी है कि किस तरीके से कुछ देश आपसी मामलों को सुलझाने के लिए एक तरह से युद्ध का सहारा ले रहे हैं। तो इन सब में भी दोनों देश, इन सब पर भी दोनों देश मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। नो डाउट कि इसके लिए डिफेंस शेयरिंग होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, इन सब में मिलकर काम करने की बात कही है फ्रेंड। चूंकि प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल था, इसलिए मैं इसे आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसकी जो मेजर चीजें थी वो मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। तीन पॉइंट्स पर कैमरन साहब ने बात की है, पहला है प्रॉस्पेरिटी, दूसरा है प्रोग्रेस, और तीसरा है बिल्डिंग ए मोर पीसफुल सिक्योर वर्ल्ड। ये तीन पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, और मुझे लगता है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया लेख है तो ये बहुत ही वैल्यूएबल है और आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मित्रों दूसरी जो खबर है ये है वो खासकर ग्वादर बंदरगाह को लेकर थी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को मालूम है कि एक ग्वादर बंदरगाह जो बन रहा है, खासकर जो एक तरीके से जो बलूचिस्तान है उसमें जो अरब सागर के तट पर इसका विकास किया जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह, और इसका विकास करने वाला देश है चीन। यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, एक फ्री ट्रेड एरिया बनेगा, एक मैरीटाइम सर्विस कंपनी भी वहां बनाई जाएगी, और इसको चीन डेवलप कर रहा है। और सच पूछे तो एक चीन की जो एक योजना है एक आर्थिक गलियारे की, ये उसी का ही एक हिस्सा है। और इसके लिए चीन ने अभी अभी पाकिस्तान ने चीन को अभी अभी 2000 एकड़ जमीन दी है, इस पर साइन हो गए हैं। डेफिनेटली भारत के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि ये जो ग्वादर बंदरगाह, इसके लिए जो आर्थिक गलियारा जो गुजर रहा है, ये पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है। मतलब कश्मीर का वह एरिया जो भारत के पास होना चाहिए, जिसे पाक ने अधिकार कर रखा, उसमें से होकर के गुजर रहा है। इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया है, लेकिन डेफिनेटली उन दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। समझौता तो पहले ही हो चुका है, अब वो जमीन भी हैंडओवर हो चुकी है 2000 एकड़, और उस पर वो काम भी बट नेचुरल है कि अब शुरू होगा। जो कहा जाता है कि 3 से 5 साल में सारी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, तो ये भारत के लिए एक चिंता की बात जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ जो भारत के पुराने अनुभव रहे हैं, और अभी भी जो अन्य दूसरी बातों को लेकर के जो एक तनाव की स्थिति बन जाती है, उसको लेकर के भारत, उस पृष्ठभूमि में भारत इस बारे में चुप नहीं बैठ सकता। देखिए आगे क्या स्थिति होती है, लेकिन खासकर जो ग्वादर बंदरगाह का जो पूरा का पूरा मामला है, ये मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, और खासकर आर्थिक गलियारे का इंपैक्ट, दूसरा मतलब भारत के आर्थिक व्यवस्था पर क्या पड़ेगा, तीसरा भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के। अगर हम इन दोनों में से किसी को महत्व देना चाहें तो डेफिनेटली वो आंतरिक सुरक्षा की बात होगी। मित्रों अब एक छोटी सी जो खबर थी वो तो आप लोगों ने न्यूज में सुना कि तमिलनाडु में उत्तर पश्चिम मानसून से भी भयानक बारिश हो रही है, और बिल्कुल सुनामी के बाद की दूसरी स्थिति आ गई है जो काफी दुखद है। उसमें आप लोगों ने एक जो वाक्य सुना होगा, खासकर ये मैं अपने फर्स्ट बैच सेकेंड बैच और थर्ड बैच स्टूडेंट के ध्यान में लाना चाहूंगा कि किस तरीके से 15 डेज की क्लासेस के बाद न्यूज को सुनने का उनका तरीका बदल जाना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग उसे न पकड़ पाए, इसलिए मैं विशेष रूप से आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आप लोगों ने न्यूज में सुना, अगर नहीं सुना हो तो फिर से आपको सुनना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार का जो एरिया है वहां कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, और चूंकि कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है इसीलिए ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अब वहां 4-5 दिनों तक बहुत तेज बारिश होगी, बहुत जबरदस्त बारिश होगी। तो मित्रों मुझे लगता है कि कम दबाव का क्षेत्र, अधिक दबाव का क्षेत्र और कैसे बनता है और क्यों होता है, ये जो कॉन्सेप्ट आपके ज्योग्राफी का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को क्लास में बहुत विस्तार के साथ समझाया गया था, जो ज्योग्राफी की एक तरह से बहुत बड़ी कुंजी है, तो आप उसे याद करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि तुरंत ये पूरे के पूरे जो खासकर तमिलनाडु में जो बारिश हो रही है वो आपकी समझ में आ जाएगा, और इस तरीके से आप साल भर में अपने आप को कितना स्ट्रांग पाएंगे, कितना आप अपने आप को सक्षम पाएंगे, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों अब न्यूज़पेपर के बारे में कुछ क्लिपिंग्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, कुछ और क्लिपिंग्स प्रोवाइड आपको की जाएंगी, जिसमें खासकर म्यांमार के बारे में भी है। अभी की सरकार ने जो कुछ सेक्टर्स में जो FDI ओपन किया है उसके बारे में भी है, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया है, ये आप लोग देख लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक अखबारों में छपी एक छोटी सी न्यूज के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, वो कल टीवी पर थी लेकिन रेडियो न्यूज में उसकी बात नहीं आई थी, और वो ये कि हरियाणा सरकार ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत उनके हरियाणा राज्य में गोवध को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी बहस भी चल रही है, और हरियाणा पहला ही राज्य नहीं है, अन्य बहुत से राज्य हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां गोवध प्रतिबंधित कर रखा है। मित्रों सिविल सर्विस की तैयारी के लिए बस ऐसी चीजों पर हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि हरियाणा ने गोवध प्रतिबंधित किया है राज्य, राइट? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या राज्य इस पर कानून बना सकते हैं, क्या ये संवर्ती सूची में है या राज्य, क्या ये राज्य सूची में है या कहीं ऐसा तो नहीं कि संवर्ती सूची में है, या फिर ये कहां है, ये کانسٹیٹیوشن کی تیاری اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ بڑے فوکسڈ طریقے سے تیاری کر پائیں گے. اس کی سب سے بڑی وشیشتا یہ ہوگی. اب آپ جب اس کو ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ تو یہ کیندر سوچی میں ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ اس پر تو کیندر قانون بناتی, راجیہ سوچی میں بھی نہیں ہے, سمورتی سوچی میں بھی نہیں ہے, تو پھر یہ کہاں ہے؟ تو پھر آپ کو اگر آپ نیتی نردیشک تتوں میں جائیں گے, ڈائریکٹو پرنسپلس میں آف اسٹیٹ, تو ڈائریکٹو پرنسپلس میں آپ کو یہ مل جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ سامان طور پر اس کو پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے, اس کو بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ ابھی کے سندرب میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, تو آپ کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں کس طریقے کا پروویژن کیا گیا ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے گائے, بچھڑا و انیہ دودھارو پشوؤں کی بلی پر روک اور ان کی نسلوں میں سدھار کو پروتساہن, یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے. میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں, گائے بچھڑا و انیہ دودھارو پشوؤں کی بلی پر روک اور ان کی نسلوں میں سدھار کو پروتساہن, یہ انچھید 48 میں ہے. یہ اپیکشا کی گئی ہے راجیوں سے کہ اگر وہ ٹھیک سمجھتے ہیں تو اپنے اپنے راجیوں میں اپنی اپنے یہاں کی استھتیوں کو دیکھتے ہوئے اس دشا میں قانون بنا سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کو راجیہ نردیشک, جو راجیہ کے نیتی نردیشک تتو ہیں, اس کے بارے میں کیول ایک نردیش دیا گیا ہے کہ ہمارے سمویدھان نرماتا جس طریقے کے راجیہ کی کلپنا کر رہے تھے کہ اس طرح کا دیش ہمیں بنانا ہے, اس طرح کے دیش کو بنانے کے لیے کس طرح کے قانون ہماری مدد کر سکتے ہیں, اس کا کیول سنکیت بھر دیا گیا ہے. اور آپ کو متروں یہ تو معلوم ہی ہے کہ جو راجیہ کے نیتی نردیشک تتو ہیں, ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی, اس کا جو پرپز ہے وہ لوک کلیانکاری راجیہ کی استھاپنا کرنا ہے. تو اس کے مادھیم سے میں کیول آپ کو ایک تیاری کرنے کے طریقے کے بارے میں بتا رہا تھا فرینڈس, اور آگے بھی ایسے بہت سے اوسر آئیں گے جب آپ کو اس طریقے سے اپنے لیے ٹاپک آئیڈینٹیفائی کرنی ہوں گی. تو دوستوں, نیوز پیپرز کے بارے میں اتنا ہی. اب میں آتا ہوں انتیم چرن پر, جو ای میل کا چرن ہے. بہت سے ای میل آج آئے ہیں اور بہت سے اسٹوڈینٹس کی طرف سے دیپاولی کی شبھ کامنائیں ملی ہیں. متروں, ان اب سبھی کا نام لینا میرے لیے سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے, لیکن میں اپنی اور سے سبھی ای میل لکھنے والے اسٹوڈینٹس کو بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا ہوں. اب تو بدھائی کا وقت آ گیا ہے, انہیں دیپاولی کی بدھائی دیتا ہوں. اور متروں, اسی میں کچھ اسٹوڈینٹس کے میں نام لے رہا ہوں جس میں انہوں نے دوسرے طرح کے وچار بھی ویکت کیے ہیں. ان کے نام ہیں امت کمار, امر سنگھ گھٹواریا علاول پور سے, شاداب قریشی نیو ڈیلی سے, ابھی اسٹوڈنٹ بھی تھے تھرڈ بیچ میں, رجیا تنوپریا سنگھ دلی سے, پریتی رنجن گھاٹ سلا سے, سندیپ کمار ہریدوار سے, دنیش کمار دلی سے, پنکج یادو اندور سے, کھیم راج جودھپور سے, راجیش کمار نیو ڈیلی سے, امن تیواری سپنا, میانک تریویدی ہردوئی سے, پرینکا راوت غازی آباد سے, اور ابھے کمار. آپ سبھی کا بہت بہت آبھار اور بہت بہت دھنیواد. تو متروں, اسی کے ساتھ ہی اب ہم لوگ آج کے اس ڈیلی آڈیو گائیڈنس کو سماپت کرتے ہیں. کل سیٹرڈے ہے, آپ کو کروکشیتر اور یوجنا کی کلپنگز ملیں گی, ساتھ ہی یوجنا آرٹیکلس ملیں گے اور اخباروں کی کلپنگز بھی آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. اور نو ڈاؤٹ کی جو فرسٹ بیچ اور سیکنڈ بیچ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسپیشل آڈیو گائیڈنس ملے گا. جہاں تک تھرڈ بیچ کو اسپیشل آڈیو گائیڈنس پرووائڈ کرنے کی بات ہے متروں, اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی کلاسز شروع ہوئی ہیں دیوالی کے تہوار کے کارن ابھی اس پر کام نہیں ہو پا رہا ہے. آپ لوگوں کی پوری ایک لسٹ بنے گی اور اس کے بعد جب وہ پورا کا پورا ایک سسٹم بن جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو بھی اسپیشل آڈیو پرووائڈ کیا جائے گا. تو متروں, اب میں اسی کے ساتھ ہی اب آپ لوگوں سے ودا لیتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ سوموار کو پھر ملاقات ہوگی. نمسکار.